آپ ہیں ایس بی ایس ہندی کے ساتھ اور خبروں کے لیے جائیں sbs.com.au/hindi پر۔
के मुख्य समाचार में एलन टच का कहना है कि आधा मिलियन डॉलर के कथित कानूनी समझौते से उनका नहीं है वास्ता, और नॉर्दर्न टेरिटरी के मुख्यमंत्री माइकल गनर ने अपने पद से दिया इस्तीफा। और खेल में मेलबर्न के दो ट्रैम ड्राइवर यूरोपियन ट्रैम ड्राइवर्स चैंपियनशिप में लेंगे हिस्सा। आज के बुलेटिन में पूर्व शिक्षा मंत्री श्री एलन टच को पिछले साल एक स्टाफ सदस्य के प्रति अपमानजनक व्यवहार के लिए अपने पद को त्यागना पड़ा था। उन्होंने कहा कि परिस्थिति के अनुसार वे वापस उसी पद पर काम करने की आशंका रखते हैं। श्री टच ने सुश्री रशेल मिलर द्वारा लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया है। श्री टच अब तक मीडिया के सामने नहीं आए थे, लेकिन उनके इलेक्ट्रेट में कैंपेन के दौरान स्काई न्यूज ने उनसे संपर्क किया था। श्री टज ने स्काई न्यूज को बताया कि इस समझौते में वे शामिल नहीं हैं।
I'm not aware of any of those things. I have no information. I haven't been called as a witness. I haven't been asked to provide evidence. And as the Prime Minister said, if it involved me, he would have been made aware, and he hasn't been made aware.
Are you looking to maintain the ministerialship, however, for the election?
Well, the Prime Minister has made clear that should we be re-elected, and I'm in a position to step back up, then I'll do so.
नॉर्दर्न टेरिटरी के मुख्यमंत्री श्री माइकल गनर ने अपने पद से इस्तीफे की घोषणा की है। श्री गनर का कहना है कि वे फानी बे से संसद के सदस्य बने रहेंगे, लेकिन अब मुख्यमंत्री का कार्यभार नहीं संभाल सकेंगे। निर्णय के लिए पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उनके परिवार में दूसरे बच्चे का जन्म होने के बाद से उनका दिल अब नौकरी में नहीं बल्कि घर पर है।
The birth of our second child the week before last confirmed something for me. My head and my heart are no longer here. They are at home. I've grappled with this decision for some weeks, but welcoming little Nash into the world sealed the deal. There is never a perfect time to step back, to walk away, to give others a go. But for me, for my family, this feels like the right time.
इस शुक्रवार मई 13 को लेबर दल नए मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए मुलाकात करेंगे। तब तक नॉर्दर्न टेरिटरी की उप मुख्यमंत्री निकोल मैंसन कार्यवाहक प्रमुख के रूप में काम करेंगी। प्रधानमंत्री वारिंगा से अपनी चुनी हुई उम्मीदवार कैथरीन डीव्स के समर्थन में अब भी खड़े हैं। सुश्री डीव्स ने जेंडर कन्फर्मेशन सर्जरी करवाने वाले ट्रांसजेंडर लोगों को सर्जिकली म्यूटिलेटेड और स्टेरिलाइज्ड कहा था। बाद में उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन अब उन्होंने इस माफ़ी को वापस लिया है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भी इस मुद्दे को किशोरों के हवाले से उठाने का गलत प्रयास किया। उन्होंने कहा कि यह एक किशोर और उनके माता पिता के लिए एक बहुत अहम मुद्दा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में 18 साल से कम के किसी भी व्यक्ति को यह सर्जरी करवाने का अधिकार नहीं है। हालांकि श्री मॉरिसन ने यह जरूर कहा कि वे इस प्रक्रिया को समझाने के लिए दूसरी तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे।
That's not a phrase that I would use, and I'm sure it's not a phrase that any prime minister would use. I'm just simply saying that, you know, this is a significant surgical procedure that completely changes someone's life, and it should never be entered into lightly.
लेबर के नेता श्री एंथनी अल्बनीसी से इस विषय पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हर कोई सम्मान का हकदार है।
I don't believe it is an appropriate comment. And I make this point. Vulnerable people, in particular, are deserving of respect. Every human being deserves respect. What we need to look for from our national political leaders as ways to unify the country and bring people together. Not play politics in order to divide people.
विपक्ष के नेता श्री एंथनी अल्बनीसी ने वादा किया है कि अगर वे 21 मई के चुनावों में जीतते हैं तो एक फेडरल इंटेग्रिटी कमीशन कायम करने को प्राथमिकता देंगे। प्रधानमंत्री श्री स्कॉट मॉरिसन ने आज सुबह न्यू साउथ वेल्स इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन यानी ICAC की आलोचना की और अपनी कैंगरू कोर्ट वाली पिछली टिप्पणियों पर कायम रहे। उन टिप्पणियों में उन्होंने कानूनी विशेषज्ञ और ICAC के वर्तमान आयुक्त की आलोचना की थी। गठबंधन ने 2019 में हुए पिछले चुनाव में फेडरल इंटेग्रिटी आयोग का वादा किया था, लेकिन अपने कानून को संसद के पटल पर लाने से इनकार कर दिया। विपक्ष के नेता का कहना है कि भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था को बाहरी हस्तक्षेप के बिना काम करने में सक्षम होना चाहिए।
It would be acceptable for that body to operate according to how it sees it should operate and not take directives from politicians about how it operates.
लेबर के नेता एंथनी अल्बनीसी ने वादा किया है कि अगर ALP 21 मई को चुनाव जीतता है तो वे मेलबर्न रेल परियोजना के लिए कई बिलियन डॉलर प्रदान करेंगे। ये प्रस्तावित रेल लूप 90 किलोमीटर की लाइन होगी जो मेलबर्न के पूर्वी उपनगरों को हवाई अड्डे की रेल और बाहरी पश्चिमी उपनगरों को जोड़ेगी। लेबर नेता का कहना है कि रेल परियोजना एक राष्ट्र निर्माण परियोजना है।
If you get advice from any transport economist and you look at the way that cities work, Infrastructure Australia and the Major Cities Unit that I established, that this government abolished the Major Cities Unit. One of the works that they did was that you need to prioritise urban public transport and you need to fix the way that they operate.
डिलीवरी प्लेटफॉर्म DoorDash और ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन TWU ने श्रमिकों के लिए पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आने वाली सरकार से एक नियामक प्रणाली का आह्वान किया है। ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी और संघ के बीच में होने वाला ये समझौता ऑस्ट्रेलिया में अपनी तरह का पहला है। TWU के राष्ट्रीय सचिव माइकल केन का कहना है कि इस उद्योग और कर्मचारियों को इस समझौते से बहुत बड़ा फायदा पहुंचेगा। DoorDash के एक कार्यकर्ता नवीन ने SBS न्यूज को बताया है कि वे इस पहल से खुश हैं।
This is a thing that we and the union are like fighting for a while. Like, you know, we have been fighting for this and this is definitely a really good initiation that the DoorDash has taken off. But yeah, everything can't be changed in a snap, but the initiation will definitely change in the future. So this is a really great thing to hear.
उधर यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि वे यूक्रेन में युद्ध बढ़ने की संभावना को लेकर चिंतित हैं। गैर नाटो सदस्य देश मोल्दोवा की आधिकारिक यात्रा के दौरान संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंटोनियो गुटेरेश ने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध के भविष्य में होने वाले परिणाम के बारे में सोचना भी भयानक है।
The impact of the war in Ukraine across the region and the world is profound and far-reaching. The consequences of escalation are too frightening to contemplate. I am deeply concerned about the continuation and possible spread of the war Russia is waging in Ukraine and by the impact it is having not only in the region but around the world.
यूरोप के सबसे गरीब देश में से एक मोल्डोवा के रूस समर्थक विद्रोही इलाके ट्रांसनिस्त्रिया में कुछ घटनाओं के बाद संयुक्त राष्ट्र प्रमुख को इस देश का दौरा करना पड़ा था। उनका कहना है कि संयुक्त राष्ट्र बढ़ते युद्ध के बीच यूक्रेन और मोल्डोवा के लोगों को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। उधर भारत में पिछले 24 घंटों में 2,288 नए कोविड मामले और 10 मौतें दर्ज हुई हैं। सक्रिय केसलोड घटकर 19,637 हो गया है। आज के मामले कल से 28.6% कम हैं और भारत में रिकवरी रेट वर्तमान में 98.74 है। मुद्रा दर की जानकारी में इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक अमेरिका में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत आज 70 सेंट्स है और भारत में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 53.77 रुपये हो गई है। K खेल समाचार में मेलबर्न के दो ट्रैम ड्राइवर यूरोपियन ट्रैम ड्राइवर्स चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए यूरोप की यात्रा करने के लिए तैयार हैं। प्रतियोगिता में पहली बार किसी गैर यूरोपीय टीम को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। यारा ट्रैम के ड्राइवर अमांडा पॉल और फ्रेंडी लिम ने पिछले कुछ दिन प्रैक्टिस करने में बिताए हैं। खिलाड़ियों के कोच वेन स्पियर्स ने SBS न्यूज को बताया कि वे सकारात्मक परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं।
Yeah, so the team are very ready. I believe that we've been training really for the last while. We've been doing a lot of work talking about the activities that we'll be doing and mentally preparing ourselves for what those things might be.
और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। पर्थ में कल बारिश के आसार और वहां का न्यूनतम तापमान 11 और अधिकतम 22 डिग्री तक जाएगा। एडलेड में एक या दो बौछार की संभावना और वहां का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहेगा और अधिकतम तापमान 21 तक जाएगा। मेलबर्न में कल आंशिक बादल रहने की संभावना और यहां का न्यूनतम तापमान 9 और अधिकतम तापमान 20 डिग्री तक रहेगा। कैनबरा में बारिश के आसार, वहां का न्यूनतम तापमान 8 और अधिकतम तापमान 17 डिग्री। सिडनी में भी बरसात की संभावना और वहां का न्यूनतम तापमान 17 और अधिकतम 23 डिग्री। ब्रिस्बेन में कल बारिश की संभावना, वहां का न्यूनतम तापमान 18 और अधिकतम 22 डिग्री। डार्विन में ज्यादातर धूप खिली रहेगी, वहां का न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक जाएगा। और वहां भारत की राजधानी नई दिल्ली में मौसम काफी गर्म रहेगा और वहां का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान होगा 41 डिग्री। मौसम की जानकारी के साथ ही आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।
ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify या फिर जहां आप podcast सुनते हैं वहां हम हैं।